जन्म दिवस है। हरिव जय राधे 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 राधे। आप तो प्रसन्न होंगे ही, लेकिन जानते हो आज सबसे अधिक प्रसन्न कौन है? आप समझ गए, सारे सृष्टि में सारे संसार में इस भौतिक जगत के परे भी दूसरा एक संसार है, आध्यात्मिक साम्राज्य है। उस जगत में भी सबसे अधिक प्रसन्न आज कौन है? श्री कृष्ण। और जब श्री कृष्ण जन्माष्टमी जब थी तो सबसे अधिक प्रसन्न कौन थी? वेरी गुड। तो हम राधा का नाम लेते हैं तो कौन प्रसन्न होता है? और कृष्ण का नाम लेंगे तो हम लोग हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 कहेंगे तो चालाक। चालाक इसे बोला जा रहा है। हरे कहते ही कृष्ण प्रसन्न, कृष्ण कहते ही हरे प्रसन्न, हरे कृष्ण। आज हम लोग कहाँ हैं? कोई पंढरपुर कहने ही जा रहे थे, कहाँ पर? रावल में है। वृंदावन में है कोई भी कह सकता है, ये तो आंख बंद करके कहने की बात है। आज लोग हम कहाँ हैं? हम लोग कहाँ हैं आज पर? वृंदावन में कह दिया आपने, आंख बंद करके तो कह दिया, लेकिन और थोड़ा दिमाग से थोड़ा सोच के अगर कहना है तो क्या कहना होगा? रावल में हम है। एक रावल गांव भी है जहाँ की कुछ प्रसिद्ध है, वो रावल नहीं, वृंदावन में एक रावल है, गोकुल के पास ही एक रावल नामक स्थान है। वहाँ का प्राकट्य है राधा का। आज के दिन राधा रानी महारानी रास की रानी रावल में प्रगट भई कहेंगे। ब्रज में क्या कहें? प्रगट भई मतलब प्रगट हुई झाली। भई कितना अच्छा लगता है सुनने में, प्रगट भई कहिए, प्रगट भई, राधा रानी प्रगट भई। रावल में वहां रहते थे राजा वृषभानु और उनकी भारिया कीर्तिदा। वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय, हम लोग कहते हैं राधा रानी को प्रणाम कहते समय। वृषभानु सुते मतलब वृषभानु सुता है, वृषभानु सुता का सुते हो गया। कैसे? जैसे राधा को हम लोग जब संबोधित करते तो क्या कहते हैं? राधे मतलब ओ राधे, हे राधे, राधा ओ राधे, ओ सीते, ओ गीते, ओ रमे। उसी प्रकार हरा का हरे होता है, हरा भगवान की आह्लादनी शक्ति है, राधा रानी ही जिसका नाम है, उस शक्ति का नाम है, उस शक्ति का व्यक्तित्व है, रूप है, नाम है, और नाम है राधा रानी। तो हुआ वृषभानु सुते, मतलब वृषभानु की तुम पुत्री हो। तप्त कांचन गौरांगी राधे, तप्त कांचन, कैसी राधा रानी, तप्त कांचन, केवल कांचन ही नहीं, कांचन को सोने को जब तपाया जाता है तो वो सोना और चमकता है, उस चमक दमक बढ़ जाती है तब सोने की, जब उस सोने को तपाया जाता है। तो तप्त तो कांचन गौरांगी, केवल कांचन गौरांगी नहीं का, तप्त तो कांचन मोल्टन गोल्ड, कैसा गोल्ड, तपा हुआ सोना, ऐसी गौरांगी, गौर वर्ण की, सुवर्ण वर्ण की, हेमांगी गौरांगी राधा रानी। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, और वो कैसी है राधा रानी, वृंदावन की ईश्वरी है। आपने क्या समझा था, वृंदावन के ईश्वर कृष्ण है, होंगे सही, लेकिन उस वृंदावन के ईश्वर की भी कोई ईश्वरी है, उनके ऊपर भी एक अधिष्ठात्री देवी है। कभी कभी राधा रानी नचाती है कृष्ण को, ऐसा स्थान, ऐसी पदवी राधा की है। जैसे हम लोग कहते हैं कृष्ण तो मदन मोहन है, कैसे है कृष्णा, मदन को मोहित करते, कामदेव को मोहित करने वाले कृष्ण को कहते हम लोग मदन मोहन, लेकिन ऐसे मदन मोहन को भी मोहित करती है कौन, राधा। इसीलिए राधा का नाम, कृष्ण का नाम नाम मदन मोहन, तो राधा रानी का नाम मदन मोहन मोहिनी, मदन को भी मोहित करने वाली राधा रानी है। ऐसे राधा रानी का जन्म दिवस सभी देवता, भारत में तो सभी दुर्दैव की बात है, राधा रानी को कई लोग नहीं पहचानते। कितने लोगों को पता है आज कि आज राधाष्टमी है, नहीं नहीं ओ आपको पता है सचमुच, आप मुझे तो लग रहा था कि आप कोई भी नहीं जानता आज की, इसलिए मैं बताने जा रहा था कि आज क्या है। माफ करना मुझे, मेरा सोचना कुछ गलत था। नहीं नहीं मैं तो सोच, जो यहां नहीं आए हैं, धिक्तान धिक्तान धिगेतान, धिक्कार है उन लोगों का, धिक्कार है, आई कंडेम। मृदंग जब बजता है ना, मृदंग जब बजता है कैसा बजता है मृदंग, अभी तो धिक 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 धिगेतान, धिक धिक धिगेतान धिक गीतान कथयति मृदंगः। कथयति मतलब मृदंग कहता है, मृदंग बोलता है। क्या बोलता है कि जो लोग जहाँ मैं यहाँ बज रहा हूँ, या कीर्तन हो रहा है, या राधाष्टमी मनाई जा रही है, यहाँ जो एकत्रित नहीं हुए हैं उनका क्या हो, धिक्कार हो। एतान उन लोगों का धिक्कार जो राधाष्टमी के महोत्सव में नहीं आए, राधाष्टमी के कीर्तन में वे सम्मिलित नहीं। ऐसे कौन कथयति, कौन मृदंग, मृदंग बोलता है, मृदंग कहता है, मृदंग की ये भाषा है, मृदंग का ये भाव है। ऐसे भी कई अभागी, हम भी तो एक समय थे ही, लेकिन अब कुछ चलो प्रभुपाद की कृपा से, रचना से अब हम राधाष्टमी महोत्सव को भी जान गए, और केवल जाने ही नहीं, हम राधाष्टमी के, राधा के जन्म उत्सव में हम लोग सम्मिलित होते हैं। और किसी के बर्थडे पार्टी में जाना एक बात दूसरी है। शरद पवार साहेब का जन्म उत्सव भी, और फिर राधा रानी के उत्सव में आना, दोनों में कौन सा भाग्यवान, कहा ना राधा रानी, जय राधे जय राधे जय राधे राधे राधे। तो आज राधा रानी का जन्म दिवस, तो रावल में जन्म हुआ ये तो आपने अभी अभी सुना, लेकिन जब राधा रानी प्रकट हुई तो वृषभानु राजा के महल में वो प्रकट नहीं हुई। राधा रानी प्रकट हुई यमुना में, या आगे यमुना, ये जो जल आप देखे ये क्या है, यमुना है। यमुना में आपने कुछ फूल भी देखे कि नहीं, देखे कि नहीं, देखे तो कौन सा फूल देखा, कमल का फूल देखा। ये नहीं समझना कि ये पानी ऐसे ही बेकार का उजनी धरन का ये पानी यहाँ है और पानी आ गया। तो सोच समझ के हमारी जो आज की श्रृंगार, राधा और पंडरीनाथ का श्रृंगार जिन्होंने किया, उस टीम ने सोच के ही कमल के फूल वहाँ खिलाए हैं। तो राधा रानी का जन्म, राधा रानी प्रकट हुई यमुना में एक कमल के फूल में। और तब प्रकट हुई जब राजा वृषभानु वहां उपस्थित थे यमुना के तट पर। फूल तो कई खिले हुए थे, लेकिन एक फूल, कमल का फूल, राजा वृषभानु का ध्यान अधिक आकर्षित कर रहा था। बड़ा विशाल और मनोहरी वो फूल था, और साथ ही साथ उस फूल से कुछ सुनहरी किरणें निकल रही थी। तो तो राजा वृषभानु ने सोचा ये क्या चमत्कार है, एक फूल से इतना तेज, इतना प्रकाश, सुनहरा प्रकाश क्यों और कैसे निकल रहा है। जिज्ञासा उत्पन्न हुई वृषभानु राजा के मन में, थोड़े अधिक निकट जाके जब देखे तो उन्होंने उस कमल के फूल में एक बालिका को देखा। उनको समझ में नहीं आ रहा था ये बालिका कौन है। उसी वक्त जब वो देख ही रहे थे बालिका की ओर, तो उन्होंने आकाशवाणी सुनी, तुम्हारे और कीर्तिदा के तपस्या का ये फल है, अपनाओ, ये तुम्हारी ही पुत्री है। तो वृषभानु बड़े हर्षित हुए, जल से उन्होंने उस बालिका को उठाया और द्रुत गति से, तेजी से अपने महल की ओर दौड़े। कीर्तिदा को भी दिखाना चाहते हैं, बालिका हुई जय राधे 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 राधा राधा हुई। तो दोनों ने ऐसे ज्यादा ध्यान नहीं दिया होगा, वृषभानु ने जब बालिका को उठाया और महल की ओर ले जा रहे थे, लेकिन जब दोनों पति पत्नी देख रहे थे बालिका को, निहार रहे थे, क्या कर रहे थे, निहार ना कहते हैं, भगवान को वैसे देखना नहीं चाहिए, कैसे क्या करना होता है, निहार, निरखून पहाना, निहारना, बड़े निहालून पहाना। तो केवल ध्यान पूर्वक ही नहीं, और क्या उस दृष्टि में और क्या होता है, जब निहारना निहारता है कोई, निहालून जब कोई पाता है देखता है, तो उस वक्त क्या होता है, प्रेम से भी देखता है, स्नेह भरी वो दृष्टि होती है। उस वक्त और कई ध्यान नहीं है, आसमान में नहीं देखा और कहीं नहीं देखा, नीचे नहीं और कहीं नहीं देखा, पूरा का पूरा ध्यान और कहीं नहीं, और मन कहीं नहीं है, केवल जो भी दृश्य है समक्ष। तो वृषभानु और कीर्तिदा के समक्ष कौन सा दृश्य था, बालिका थी, सुनहरी बालिका थी। जब तो निहार ही जब रहे थे ध्यान पूर्वक और स्नेह पूर्वक, स्नेह, स्नेह का वैसे स्निग्धता से भी संबंध है, तो कोई स्निग्ध जैसे घी होता है तो वो बहता है, स्निग्ध पदार्थों में वो बहते भी हैं, एक स्थान से धीरे धीरे क्या करते हैं, बहते हैं। तो स्नेह में प्रेम बहता है एक व्यक्ति के दिल की ओर से, दिल हृदय की ओर से दूसरे की ओर, इसको स्नेह कहते हैं, मतलब कुछ हो रहा है, बह रहा है स्नेह। तो हुआ ये दोनों बालिका को बड़े ध्यान पूर्वक स्नेह पूर्वक देख ही रहे थे, तो और कुछ समय से देख रहे थे, तो उन्होंने क्या देखा क्या समझा, बालिका तो इतनी सुंदर तो है, गोजीरवाणी है, मराठी में कुछ अच्छे और भी अच्छे शब्द, या वो कहने से थोड़ा हमें और समझ में आता है। हुआ सब कुछ बढ़िया था उस रूप में, लेकिन अब दोनों ने अभी नोट किया, कुछ समय से देख रहे थे, ए ये बालिका अंधी है क्या? कुछ समय से देख रहे थे, उसने आंखें तो नहीं खोली थी, आंखें बंद थी। ये दोनों देख रहे थे बालिका को, लेकिन बालिका उनको नहीं देख रही थी, आंखें बंद थी। उन्होंने सोचा कि बालिका अंधी है, इसीलिए स्वाभाविक है माता पिता बड़े ही दुखी थे। कितनी सुंदर बालिका, किंतु एक अभाव है, एक त्रुटि है इस रूप में, वो आँख आँख नहीं है, आँखों से दृष्टि नहीं है, देखती नहीं है बालिका। इसके कारण दोनों माता पिता अति दुखी थे। तो भी चलो बालिका हुई है, चलो हम उत्सव मनाते हैं, तो उत्सव की तैयारी प्रारंभ हुई। ये पहला राधाष्टमी का महोत्सव मनाया जा रहा था रावल में। राधा के प्राकट्य का समाचार पूरे ब्रज मंडल में फैल गया। किसी ने फोन किया, टेलीग्राम भेजा, ईमेल मैसेज वगैरह, ऐसा कुछ नहीं हुआ। भगवान की और राधा रानी की रचना से व्यवस्था ऐसी है। भगवान की कई सारी शक्तियां वृंदावन में कार्य करती है, वो दिखाई भी नहीं देगी, वो शक्ति युक्ति पूर्वक भगवान की शक्तियां समाचार पहुंचा सकती है। राधा पंडरीनाथ की जय, राधे पंडरीनाथ। तो सारा ब्रज को समाचार प्राप्त हुआ। क्या हुआ? राधा रानी हुई रावल में, राधा भई, राधा भई, राधा हुई, राधा हुई, वृषभानु और कीर्तिदा की पुत्री हुई। हरी भाव, हरी भाव, राधी भाव, हरी भाव, जय राधे, जय राधे, जय राधे। उन लोगों ने, उन भक्तों ने 5000 वर्ष पूर्व अपना हर्ष व्यक्त किया। इट इज बेटर लेट देन नेवर कहते हैं, बेटर लेट। तो हम लोग थोड़ा देरी से अपना हर्ष व्यक्त कर रहे, कितनी देरी से? 5000 वर्ष देरी से, लेकिन वो भी अच्छा है। कुछ लोग तो और 10 लाख वर्षों तक अपना हर्ष व्यक्त नहीं करेंगे, ऐसा भी संभव है कि नहीं? राधा रानी की कृपा है। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान, जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। हम जो यहां एकत्रित हुए हैं अपने सामर्थ्य से नहीं, भगवान राधा और कृष्ण की कृपा से, उनकी रचना से हम लोग यहां पहुंचे हैं। यह हमारा अहोभाग्य है। आज हम अपना हर्ष और उल्लास प्रकट कर रहे हैं। जय राधे, जय राधे, जय राधे। तो सारे ब्रज के निवासी रावल में पहुंचे। जैसे जब कृष्ण जन्मे थे तो क्या हुआ, सभी पहुंचे ही थे, सभी दौड़ रहे थे। कहाँ दौड़ रहे थे? गोकुल दौड़ रहे थे। राधा कृष्णाष्टमी के दिन कहाँ दौड़ रहे थे? गोकुल दौड़ रहे थे। कुछ लोगों को पहले पता चला, कुछ लोगों को देरी से पता चला, या पता भी नहीं था तो कुछ लोग, ए क्या हुआ, क्या कोई इमरजेंसी है, क्या आतंकवाद, क्या समस्या, क्या क्यों दौड़ रहे आप लोग? तो वो लोग क्या कह रहे थे, आनंद आनंद भयो, नंद के घर क्या हुआ, आनंद भयो, भयो दोबारा आ गया, देखिए भयो, नंद के घर में क्या हुआ, आनंद हुआ, आनंद मतलब घर में ही आनंद ही आनंद। नंद महाराज का नंद भवन घर आनंद से भर गया, आनंद का सागर हुआ और सारे ब्रज ब्रज भर में वो आनंद फैल गया। ये एक समझ हुई। और आनंद भयो मतलब और क्या, आनंद भयो मतलब क्या हुआ, आनंद हुआ मतलब क्या हुआ, कृष्ण हुए। नंद के घर आनंद भयो, आनंद कौन है, आनंद किसका नाम है, कृष्ण का नाम, सच्चिदानंद आनंद कृष्ण का नाम है। तो सब लोग कह रहे आनंद भयो, आनंद भयो, नंद के घर आनंद भयो। ये सुनते ही लोग क्या समझ गए, आनंद भयो मतलब कृष्ण हुए, बालक हुआ। नंद महाराज भी थोड़े दुखी थे, या वृषभानु भी दुखी थे, उनके दुख का कारण और था, और यह नंद महाराज भी दुखी थे, उनके दुख का क्या कारण था, पुत्र ही नहीं था, पुत्रहीनम गृहम शून्यम कहते, पुत्रहीन घर कैसा है, शून्य है। तो नंद बाबा के घर में कोई पुत्र नहीं था, इसलिए दुखी थे। और अभी क्या हो गए, वे सुखी हुए। तो जो दुख का कारण था, पुत्र नहीं था, वो नहीं रहा, अब दुख नहीं रहा क्योंकि पुत्र हुआ। इसीलिए क्या कह रहे सभी लोग, आनंद आनंद के घर, नंद के घर आनंद भयो। तो यह कीर्तिदा के घर क्या क्या हुआ, रावल में क्या हुआ, रावल में भी आनंद हुआ। और उस दिन गोकुल में भी आनंद हुआ। तो सभी नगरों से गांवों से अब सभी जा रहे थे, ब्रजवासी रावल की ओर जा रहे थे। तो गोकुल के निवासी भी आ गए, और गोकुल के निवासी आए होंगे तो फिर कौन आए होंगे, कैसे, चल के नहीं, कृष्ण बड़े छोटे थे और बलराम उसे थोड़े से मोटे थे। कृष्ण थे 1 साल के, बलराम कितने साल के होंगे, 2 साल। यस, बलराम कितने साल के होने चाहिए, 2 साल के, क्योंकि हर वर्ष एक एक बालक का जन्म होता था, ये हिसाब बताया आप, छः साल में छः बालक, फिर सातवें साल किसका जन्म, बलराम का, और आठवां पुत्र है एक साल के उपरांत कृष्ण का जन्म। तो कृष्ण और बलराम को लेके नंद बाबा, यशोदा, रोहिणी इत्यादि गोकुलवासी भी वहां पहुंच गए। तो अब तक राधा रानी को झूले में लिटाया था, मुझे पूरे श्रृंगार साज श्रृंगार के साथ वो झूला, हिंडोला भी कहते हैं क्या, हिंडोला, उसमें लिटाया था। राधा रानी को मंगल वाद्य बज रहे थे, शहनाई वादन, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स वर बीइंग प्लेड। राधा रानी का जन्म हुआ, बड़ा दिव्य वातावरण। जय हो, जय हो, जय हो। बस अभी आशीर्वचन में कह रहे थे बालिका को, बालिका का स्वागत और आशीर्वाद सभी समर्पित कर रहे थे। तो जो भी आते थे वो झूले की ओर जाते थे और देखते थे बालिका को, कुछ पुष्प अर्पित करते होंगे और कोई भेंट, गिफ्ट्स, कुछ मधुर वचन, कुछ स्तुति। तो कृष्ण और बलराम भी तो पहुंचे थे नंद यशोदा के साथ। तो कृष्ण देख रहे थे कि जो भी नए लोग आते हैं तो पहले कहां जाते हैं, वो झूले के पास जाते हैं। तो कृष्ण इतने छोटे थे, उनको पता ही नहीं चला बात क्या, वहां क्यों जाते हैं, सब वहां क्या पड़ा है, क्या अंदर क्या रखा क्या है। तो कृष्ण ने सोचा कि चलो मैं भी, सभी जाते हैं, सभी को शायद जाना चाहिए, नहीं तो बाद में लोग कुछ दोषारोपण हो सकता है। सभी लोग गए लेकिन ये कृष्ण जो है ना, ये नहीं गया, क्या समझता अपने को, ये थोड़ा मोटा होने के बाद, बड़ा होने के बाद शायद कहेंगे, अब तो नहीं कहेंगे। तो फिर कृष्ण ने भी क्या, चलो हम भी चलते हैं। तो कृष्ण इतने छोटे थे, अभी अभी चलना सीखा था उन्होंने, कृष्ण को भी क्या चलना सीखना पड़ता है। तो मुश्किल से वे वहां तक चल के पहुंच गए और वो झूला कुछ उनकी कृष्ण के कद से कुछ अधिक ही था ऊंचा। तो कन्हैया ने बड़े मुश्किल से थोड़ा झूले को थोड़ा नीचे दबाया होगा और अपने मुंह को ऊपर पैर से और अंदर उन्होंने देखा कौन देख रहे हैं, कृष्ण देख रहे हैं। तो कृष्ण ने अपना मुख उस बालिका के मुख के समक्ष ही जब रखा, पहुंच गया, वो बालिका की आंखें बंद तो थी लेकिन उसको आंख से देखने की आवश्यकता नहीं है, राधा रानी और अंगों से भी देख सकती है। तो उसको पता चला मेरे प्राणनाथ यहां पहुंचे हैं। तो इस बालिका ने क्या किया, झट से अपनी आंखें खोल दी। फिर इन दोनों ने एक दूसरों को खूब देखा, जी भर के देखा। राधा कृष्ण को देख रही थी और कृष्ण देख रहे थे राधा को। तो ये बालिका क्या अंधी थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन आंखें बंद क्यों थी? उसने सोचा होगा कि मैं मेरे आंखों का उद्घाटन जब करूंगी, इसका आंखों का जब ओपनिंग होगा, आई ओपनिंग सेरेमनी, इनॉग्रेशन फंक्शन जब होगा आंखों का, उन्मीलनम नेत्रोन्मीलनम नेत्रोन्मीलनम जब होगा, तो मैं पहला जो दृश्य है किसको देखना चाहूंगी? केवल कृष्ण को देखना चाहूंगी। इतने दूर से अपने धाम से मैं और किसी का मुखड़ा देखने थोड़े ही आई हूं। मैं देखूंगी तो किसको देखूंगी? कृष्ण को ही देखूंगी। ऐसी है राधा रानी का ये पतिव्रता पातिव्रत्य। ऐसे पति पत्नी का भाव नहीं है, संबंध नहीं है ब्रज में, परकीय भाव है। लेकिन राधा रानी के अगर कोई पति हो सकते तो और कौन हो सकते हैं कृष्ण के अलावा? राधा बल्लभ, किसका नाम है? राधा बल्लभ। बल्लभ मतलब पति। रुक्मिणी वल्लभ कौन है? विठल। रुक्मिणी वल्लभ है वल्लभ, तो राधा बल्लभ कृष्ण। तो वही तो कृष्ण को वो आंखें बेकार है, क्या कहते हैं? वो आंखें बेकार है जो क्या करते हैं, जो हरि का दर्शन न करने वाली जो आंखें हैं, वो आंखें कैसी है? वो बेकार है। पापाची वासना नको दाऊ डोड़ा, क्या हुनी आंधळा बरासमी। तुका म्हणे, तुकारा महाराज ने क्या कहा? अगर मुझे कुछ पाप का दृश्य, कुछ पाप देखना है इन आंखों से, तो अच्छा है कि मेरी आंखें इसी वक्त बंद हो। भगवान मुझे अंधाई बना दो। पापाची वासना नको दाऊ डोड़ा, दाखू नका हो भगवंता मला या डोड़ा ने दूसरे कौन तो दृश्य सुंदर ते ध्यान उभावी ठेवरी कर कटावरी ठेवनिया तुलसी हार गळा कासे पीतांबर आवड़े निरंतर हीचि ध्यान। मकर कुंडल तलपति श्रवणी कंठी कौस्तुभ मणि विराजित, तो कामणे माझे हेचि सर्व सुख, पाहीन श्रीमुख विठोबाचे, पाहीन श्रीमुख विठोबाचे। बस इन आंखों से और कुछ नहीं देखना चाहता हूं। तुकाराम महाराज का भी यही भाव, केवल कृष्ण को, विठ्ठल भगवान को देखने के लिए आंखें हैं। देखने की चीज है तो क्या करो, कहते बार बार देखो, और बार बार ही क्या, हजार बार देखो। तो देखने की चीज कौन है, वो देखने की चीज कौन सी चीज है वो, हा? सोच के कहो कौन है वो देखने की चीज। देख राधा पंडरीनाथ, तो जी भर के देखिए। राधा रानी भी जब कृष्ण को देखती है, गोपियां भी जब कृष्ण को देखती है, वो क्या करती है, इतना देखती है जी भर के, इतना देखती है कृष्ण को कि कृष्ण के रूप को राधा रानी और गोपियां पी जाती है। क्या करती है, उस रूप को पीती है, खिड़की में से, आंखों की खिड़की में से कृष्ण को अंदर ले जाती है और वहां सिंहासन बना के वहां कृष्ण को बिठाती है और खूब निहारती है। समक्ष कृष्ण है भी तो समाज की ऐसी व्यवस्था है, कृष्ण है युवक, राधा रानी है युवती, कृष्ण है किशोर, राधा है किशोरी, किशोर किशोरी जो अवस्था है, इस अवस्था में युवक युवतियों को एक दूसरों की ओर देखना भी वैसे मना होता है हमारे समाज में। तो इस संस्कृति का ओरिजिन, स्रोत वैसे भगवान का धाम ही है। भगवान के धाम में भी इसी प्रकार का सदाचार, ब्रह्मचर्य का पालन। तो कृष्ण कभी कभी तिरछी नजर से नयनेर कोने देखा करते थे, राधा रानी यहां बैठी उनको भी देखना मुश्किल। एक बार देख रहे थे जब गोवर्धन धारण किए थे कृष्ण, तो कृष्ण ने तिरछी नजर से राधा रानी को जब देख ही रहे थे तो बलराम ने इतने में देखा। अब समझे, तो कृष्ण पकड़े गए। तो ऐसी मुश्किलें हैं तो राधा गोपियां कृष्ण को ऐसी अंदर ले जाती है, अपने भगवान के रूप को ही ले जाती है। मनोमयी भगवान के आठ प्रकार के अलग अलग वस्तुओं से, पदार्थों से, एलिमेंट से बने हुए विग्रह होते हैं। तो शीला और संगमरमर कई है, मणि की, और उसमें एक है मनोमयी। आठ जो धातुओं से भगवान की मूर्ति विग्रह बनाया जा सकता है, उसमें एक तत्व कौन सा है, मन से। मन से हम लोग भगवान का रूप बना सकते हैं, वैसे कल्पना से नहीं, जो रूप हमने, जिसका वर्णन हमने सुना है, वो सुन सुन के उस रूप को अधिक सुनेंगे तो रूप क्या होगा, रूप धारण करेगा। जैसे पेंटर जो होता है, कलाकार चित्रकार, जब चित्र खींचता है तो यहाँ एक डॉट, वहाँ एक डॉट, यहाँ एक डॉट, डॉट 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 के फिर अंत में क्या होता है, एक चित्र शुरू पूर्ण होता है। तो हम लोगों ने भी भगवान का वर्णन सुना है, ये सुने तो फिर भूल जाते हैं, पुनः सुनते हैं। तो हर वक्त जैसे हम लोग सुनेंगे, और फिर कैसे सुनेंगे, श्रद्धा से सुनेंगे ध्यानपूर्वक, और श्रद्धा से भी सुनेंगे तो फिर वो भगवान के रूप का जो रूप है, उसकी जो छवि है, वो चित्र है, हमारे चेतना का जो पटल है, स्मृति पटल है, उसमें क्या होगा, उसका इम्प्रेशन हो जाएगा, डीप इम्प्रेशन। फिर उसको क्या नहीं कर सकते, उसको मिटा नहीं सकते। और फिर उस स्थिति में मन मन में हमारे मन में भगवान का रूप, यतो यतो यमी ततो न श्रृंगा हृदय न बहेर न श्रृंगा हृदय न, सर्वत्र अंदर है बाहर है, जहां जहां मैं जाता हूं, यतो यतो यामी ततो न श्रृंगा, जहां जहां यतो यतो यतः, जहां जहां जाता हूं आता हूं ततः, वहां क्या है, सिंह नरसिंह। ना देखे तार मूर्ति, ना देखे तार मूर्ति, स्थावर जंगम देखी ना देखे तार मूर्ति, सर्वत्र है इष्ट देवेर स्फूर्ति, ऐसे कहा। जब सुखदेव गोस्वामी, और सुखदेव गोस्वामी का नाम आ ही गया वैसे, तो सुखदेव गोस्वामी की आराध्या राधा रानी है, सुखदेव गोस्वामी आराधना करते किसकी, राधा रानी की, इसलिए सुखदेव गोस राधा रानी का एक नाम है शुक इष्टा, इष्ट होते ना इष्ट देव, अगर देव है तो इष्ट और देवता है तो इष्टा, तो राधा रानी देवत देवता मतलब देवी है के देवता, देवता भी मराठी में एक ही लिंग चलता है, देव देवता, देवी है तो इष्टा होगी, तो राधा रानी सुखदेव गोस्वामी की इष्टा है, आराध्या है। तो सुखदेव गोस्वामी या ऐसे ही नारद मुनि, जैसे ही भक्त प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, ऐसे कई महाराज आज जो हुए हैं, वे कई जाते हैं आते हैं, भ्रमण होता है उनका, तो हुआ वैसे और वस्तु भी देखते हैं, और पदार्थ देखते हैं, पेड़ देखते हैं, कार देखते हैं, लेकिन देखते हुए भी पश्यन अपि न पश्यति, देखते हुए भी इन पदार्थों की ओर, इमारत की ओर उनका ध्यान ज्यादा नहीं जाता है। ना देखे तार मूर्ति, ये बाहर की और जो मूर्तियां है और जो रूप है उनकी ओर उनका ध्यान नहीं होता है, उनका ध्यान कहां होता है, सर्वत्र हो इष्ट देवेर स्फूर्ति, इष्ट देव देवता की स्फूर्ति उनको होती रहती है। तो जैसे हम श्रवण करेंगे तो भगवान अपना रूप, वैसे भगवान हमारे हृदय प्रांगण में बैठे हैं, वो हमें स्मरण भी दिलाएंगे कि मैं तो तुम्हारे साथ हूं। और इसी के साथ मां सुचाहा, फिर हम लोग निर्भय बनेंगे, कोई भय नहीं रहेगा। तो राधा रानी का, तो राधा रानी का संक्षिप्त में हमने जन्मोत्सव का प्रसंग का श्रवण किया, और उसमें मुख्य बात ये देखी हमने कि राधा रानी जब जन्मी थी उसने क्या नहीं किया था, अपनी आंखें नहीं खोली थी, क्योंकि वो कृष्ण सामने कब आती, इसकी प्रतीक्षा में थी वो। कृष्ण जैसे सामने आ ही गए तो उसने क्या किया, झट से आंखें खोली। तो इसे जन्म से ही राधा रानी इस संसार को कुछ सबक सिखाना चाह रही है, चाह रही होगी। क्या सबक है, क्या लेसन है इस जन्म की कथा से, क्या लेसन, क्या क्या सीखेंगे, क्या समझते हम लोग? हाँ, कीर्तनी सदारी, अच्छा वो भी वो ठीक ही है, उसका गलत तो नहीं कह पा सकेंगे। हाँ, देखना है तो कृष्ण को देखो, देखना है तो कृष्ण को देखो, और फिर सुनना है तो, और फिर सूंघना है तो, स्पर्श करना है तो कृष्ण के चरण कमलों को, और क्या बाकी, सेवा करनी है तो किसकी सेवा करें, कृष्ण की सेवा करें। किसी को बॉस बनाना है तो कृष्ण को बनाओ, किसी का दास बनना है तो कृष्ण के दास बनो, किसी को कुछ भेंट देना है तो कृष्ण को भेंट, खाना है तो कृष्ण को खाओ। हाँ हाँ, ये कृष्ण प्रसाद क्या है, कृष्ण ही है, कृष्ण प्रसाद कृष्ण बन जाते हैं, अन्न पर ब्रह्म, अन्न भगवान को जब खिलाते हैं, भोग लगाते हैं तो कृष्णाइज्ड होता है, वो कृष्ण का रूप ही धारण करता है। यद करोसी यद अस्नासी यद जिहोसी ददासी यत यत तपस्वसी कौन्तेय तद कुरुस्व मदर्पणम। तो ऐसे संसार में कई सारे भक्त करते हैं, और उन सभी भक्तों में जो श्रेष्ठ भक्त है, उत्तमा भक्ति जिस भक्त की है, वो भक्त है कौन, जय राधे, जय राधे, जय राधे। राधा किसकी भक्त है और कृष्ण किसके भक्त है, राधा के, ये भी समझना है। तो ऐसे राधा को समझना कृष्ण के लिए भी कठिन होता है कभी कभी। ये राधा का प्रेम, राधा का भाव, राधा के विरह की व्यथा कथा गाथा, ये कृष्ण के लिए बड़ा क्लिष्ट टॉपिक है, विषय है। तो राधा को समझने के लिए कृष्ण ने क्या किया, चैतन्य महाप्रभु बने, चैतन्य महाप्रभु बने कृष्ण। तो कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बने तो फिर घनश्याम क्यों नहीं है, या देख रहे हैं ना आप, ये बीच में मध्य में कौन है, चैतन्य महाप्रभु है, वो घनश्याम है क्या फिर, तो कृष्ण कैसे, क्योंकि वो केवल कृष्ण नहीं है, चैतन्य महाप्रभु और कौन है, राधा रानी है, राधा और कृष्ण है, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य। तो यहां कृष्ण अंदर है और बाहर, बाहर राधा रानी है, इसीलिए बाहर कौन सा रंग है, गौरांग। तो राधा रानी का एक नाम है गौरांगी, तो चैतन्य महाप्रभु का एक नाम है गौरांग। अब स्पष्ट हुआ, थोड़ा थोड़ा, यस, हर वक्त होता है थोड़ा थोड़ा क्लियर। ये गौरांग, गौरांग क्या है, निताय गौरांग, निताय गौरांग, ये कौन, क्या भानगढ़, क्या भानगढ़, हाँ, ऐसा गौरांग कौन कौन है, और कौन क्यों है, और गौरण मतलब गोल्डन, तो राधा रानी है, ये राधा और कृष्ण है चैतन्य महाप्रभु। तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जो अंतिम लीला जगन्नाथपुरी में हुई, अंतिम लीला मतलब एक दिन की नहीं, हम लोग तो चैतन्य महाप्रभु की अंतिम लीला, अंत लीला तो 18 वर्षों तक चलती रही जगन्नाथपुरी में। तो उस अंतिम लीला के भी कुछ अंतिम वर्ष, कुछ कालावधि, उस समय श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु पूरे राधा भाव, ये राधा कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जो बने थे वो केवल राधा भाव, राधा भाव, क्योंकि उनका उद्देश्य था, एक उद्देश्य भगवान के प्राकट्य का चैतन्य महाप्रभु के रूप में उद्देश्य क्या, राधा रानी के भावों को राधा भावसुवलितम, राधा का भाव और राधा का वर्ण, रंग और भाव दो चैतन्य महाप्रभु ने अपनाए या धारण किए, राधा रानी का भाव, राधा रानी का रंग, वर्ण अंग का वर्ण रंग। तो राधा के भाव में चैतन्य महाप्रभु ने वो समय बिताया। तो जिस भाव का वर्णन वैसे श्रीमद् भागवतम में भी हम पढ़ नहीं पाते, राधा का भाव, राधा को अधिक जानना है तो चैतन्य चरितामृत पढ़ना होगा। भागवतम के जो वक्ता सुखदेव गोस्वामी, उन वे भी राधा के भाव से परिचित तो थे ही, लेकिन एक समस्या, बड़ी समस्या थी सुखदेव गोस्वामी के समक्ष, और वो क्या, राधा के भाव को, राधा के विरह को अगर वो वर्णन प्रारंभ करते तो सुखदेव गोस्वामी स्वयं ही ध्यानस्थ होते, भाव विभोर होते, देह भान कहते भूल जाते शरीर को, शरीर को भूल जाते तो फिर उनका बोलना भी बंद होता। लेकिन ये कथा बंद की जा सकती थी क्या, कथा 7 दिवस होनी थी राजा परीक्षित के सेवा में, राजा परीक्षित के पास केवल कितने दिन की अवधि थी, सप्ताह की अवधि थी। तो सुखदेव गोस्वामी अगर सारे भावों को वर्णन करते, करना प्रारंभ करते तो फिर 6 महीने के लिए गए काम से, कथा खंडित हो जाती। इसलिए बड़े सावधानी से, बड़े ही सावधानी से सुखदेव गोस्वामी ने कुछ संक्षिप्त सा ही रूप, या रूप लीला का, राधा कृष्ण के मिलन का, संबंध का, भावों का, आदान प्रदान का, मिलन का, विरह का वर्णन किया संक्षिप्त में भागवतम में। और जहां तक सुखदेव गोस्वामी राधा रानी के नाम लेने की बात है तो उन्हें नाम लिया है, राधा रानी का नाम भी, क्योंकि राधा रानी का हम लोग तो बदमाश है, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, कुछ नहीं होता है, राधे सुखदेव गोस्वामी अगर कहते राधे, एक ही बार कहते तो आधा इतना समय कह भी नहीं पाते हो, क्या हो जाते, लोटांगन करते, लौटने लगते, मूर्छित होते, उनके रोंगटे खड़े हो जाते, आंसू बहना शुरू होता, अशुद्ध धारा स्तंभित हो जाते, स्तंभ स्तंभ की तरह, ये भी एक भाव। अष्टविकार जो है उसमें से एक क्या है, स्तंभित होना, कभी हंसना तो कभी रोना, तो इस प्रकार के भाव है। मतलब आत्मा का जब भगवान के साथ संपर्क होता है, आत्मा और परमात्मा भगवान राधा कृष्ण के साथ जब मिलन होगा, तो उसके सारे ये लक्षण बाहर प्रकट होते हैं, अष्टविकार। तो हम तो कहते रहते राधे राधे कहते रहते, कुछ ज्यादा अंतर नहीं पड़ता है हम, लेकिन सुखदेव गोस्वामी राधे कहते तो फिर क्या कह भी नहीं पाते पूरा राधे। थोड़े समय कुछ कुछ क्षण कुछ सेकंड ही उन्होंने कहा तो फिर उनकी गदगद वाणी गदगद हो उठती। तो इसीलिए वैसे मेरे समक्ष एक मैंने पन्ना खोल दिया यहां, तो वो श्लोक आया है श्रीमद् भागवतम में, केवल एक स्थान पर, केवल एक ही स्थान पर राधा रानी के नाम का केवल संकेत हुआ है सुखदेव गोस्वामी की ओर से। दसवां स्कंध है, अध्याय संख्या 30 है और श्लोक संख्या 28 है। 10, 30, 28 में अनया आराधितो नूनम भगवान हरिरीश्वरः यन्नो विहाय गोविंदः प्रीतो याम अनयद्रः। अनुवाद, इस विशेष गोपी ने अवश्य ही सर्वशक्तिमान भगवान गोविंद की पूरी तरह पूजा की होगी, क्योंकि वे उससे इतने प्रसन्न हो गए कि उन्होंने हम सबों को छोड़ दिया और उसे एकांत स्थान में ले आए। तो यह कैसे युक्तिपूर्वक उपयोग, कहां राधा रानी को ही कहा है अनया, वो उसके द्वारा आराधितो। अनया मतलब यह, अनया मतलब जिसने, उसने, वो राधा रानी ने कृष्ण की आराधना की, आराधना और राधा का घनिष्ठ संबंध है। आराधना शब्द कहते ही उच्चारण करते ही हमें पहले किसका स्मरण होना चाहिए, राधा रानी का। तो अनया आराधितो नूनम भगवान हरिरीश्वरः, उस हरि को, इस ईश्वर को, ईश्वर को अनया, इस गोपी ने, उस विशेष गोपी ने हरि की आराधना करके उनको प्रसन्न किया और वो प्रसन्न हुए। कृष्ण गोविंद ने क्या किया, उसको एकांत में ले गए, हमको पीछे ही छोड़ दिया। यन्नो विहाय, उन्होंने पीछे ही छोड़ दिया और उसको अनया आराधितो, उस आराधना करने वाले उस विशेष गोपी को लेके वो एकांत में चले गए। ये कहा है किसने, गोपियों ने, इस संदर्भ में गोपियों ने कहा है, आपस में जब खोज रही थी कृष्ण की खोज में, गोपियों द्वारा कृष्ण की खोज नाम का ये अध्याय ही है, अध्याय संख्या 30। तो यहां आराधना या राधा का संकेत हुआ है, और कई पूरे भागवत में आपको राधा का नाम नहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं है। तो अधिक राधा के बारे में कोई जानना चाहता है, राधा कृष्ण को, उनकी लीला को, उन दोनों के मिलन को, दोनों के विरह को, तो वो किस ग्रंथ में हम पढ़ सकते हैं? चैतन्य चरितामृत, जहां स्वयं कृष्ण राधा के भाव में उनके अनुभव जो रहे, कृष्ण का अपना अनुभव, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। पहले तो जब राधा कृष्ण थे तो कृष्ण अपने स्थान पर, राधा अपने स्थान पर, और कृष्ण कुछ अंदाजा तो करते ही होंगे कितनी विरह की व्यथा है, कितना कष्ट होता होगा राधा रानी को, गोपियों को, लेकिन पूरा समझ नहीं पाते थे। ऐसे रुक्मिणी ने कहा था वैसे द्वारकाधीश को द्वारका में, आप क्या जानते हो, आपका नाम तो रखा है सर्वज्ञ, लेकिन आप सब नहीं जानते हो। हमारे दिल को, हृदय को जो कष्ट होता है, आप जब हमसे दूर होते हो, हमको अकेले में जब रहना पड़ता है, हम जब बिछुड़ जाते हैं, उस वक्त की जो वेदना है, कष्ट है, व्यथा है, उसको तो आप नहीं जानते हो। तो जो भगवान नहीं जानते थे, या जो रुक्मिणी ने कहा, आप तो नहीं जानते हो सब कुछ, हम ही जानती है। तो जिस बात को, जिस भाव को, जिस विरह को, जिस आनंद को भी, अरे इतनी प्रसन्न क्यों हो तुम मुझे देख के, किस बात का तुम अनुभव कर रही हो, मेरी ओर जब तुम देखती हो तो मुझे जितना आनंद, उससे तुमको अधिक आनंद मिलता है, बात क्या है, क्या देखती हो मुझ में तुम। तो जो राधा रानी देखती है, कृष्णा नहीं देख पाते, तो बन गए जब वे चैतन्य महाप्रभु, तब राधा रानी की आंखों से, राधा रानी की आंख का चश्मा बना के अब कृष्ण की ओर वो देखते हैं, राधा रानी की भूमिका निभाते हैं और कृष्ण को समझते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु के अवतार में, रूप में जो भक्ति भगवान ने की है, उसका प्रदर्शन या प्रस्तुतिकरण जो हुआ है, ऐसी भक्ति किसी ने नहीं की है। चैतन्य महाप्रभु की भक्ति, उनका भाव, ऐसा भाव संसार में न भूतो न भविष्यति, कभी किसी ने ऐसे भाव को दिखाया है, न तो कोई दिखा सकता है, ऐसा प्रकट कर सकता है, और संभव भी नहीं है, क्योंकि यह भाव किसका है? चैतन्य महाप्रभु जिस भाव को प्रकट कर रहे हैं, वो भाव किसका है? वो राधा का भाव है। तो राधा के भाव के साथ कोई प्रतियोगिता, कोई कंपटीशन संभव है? संभव ही नहीं। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन, चैतन्य महाप्रभु का स्थापित आंदोलन, और फिर उसी आंदोलन की स्थापना, पुनः स्थापना भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद किए 40 वर्ष पूर्व, और अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ जो भक्ति का प्रचार कर रहा है, ये सर्वोत्तम भक्ति का प्रचार है। संसार में और कोई धर्म, संघ, या जो भी नाम लेना चाहोगे, इस प्रकार का प्रचार कर ही नहीं सकता, भक्ति का प्रचार। और भक्ति तो सर्वोत्तम है ही, सभी योगों में, कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, और क्या क्या योगों में सबसे श्रेष्ठ योग कौन सा है? भक्ति योग है। और उस भक्ति योग का प्रचार और प्रसार करने वाला आंदोलन श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का है। संकीर्तनै कपितरौ इस संकीर्तन आंदोलन के, इस भक्ति आंदोलन के परमपिता, फाउंडिंग फादर श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु है। इस आंदोलन द्वारा जो प्रेम का वितरण हो रहा है, भक्ति का जो प्रचार प्रसार आचार विचार हो रहा है, ये सर्वोच्च विचार है, इसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। शायद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर थे तो उन्होंने समझाया कि गौड़ीय वैष्णव हम लोग भी भक्ति करते हैं, राधा कृष्ण के हम भी पुजारी है, और फिर सनातन धर्म हिंदू धर्म में भी राधा कृष्ण के पुजारी होते हैं, तो दोनों में क्या अंतर है? तो उन्होंने कहा अंतर ये है, सारा संसार तो समझता है कि सभी भक्ति करते हैं और राधा रानी भी कृष्ण की भक्ति करती है। राधा रानी भी किसकी भक्ति करती है, पूजा करती है? कृष्ण की करती है। लेकिन गौड़ीय वैष्णव उनकी समझ क्या है? राधा मदन मोहन मोहिनी या राधे वृंदावनेश्वरी, राधा की भी आराधना करते हैं कृष्ण। आप समझ रहे कौन किसकी आराधना करते हैं, उनसे ये दो बड़े अंतर हैं। तो गौड़ीय वैष्णव राधा रानी का प्राधान्य प्रधानता राधा रानी को है, कृष्ण तो राधा के पुजारी बन जाते हैं। हाँ सुनो क्या
सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी।
बरसाने वाली तुम्हारे हम क्या बने? गुलाम बन गए। कृष्ण कहते, कृष्ण कह रहे, कृष्ण कह रहे कि बरसाने वाली हम क्या बने हैं तुम्हारे? गुलाम बन गए। अब आदेश दो। ये भाव वैसे कठिन है समझना जो हुआ श्री गोविंद गोविंदा किसको कौन लिखे, जयदेव गोस्वामी, जयदेव गोस्वामी इस भाव को लिख रहे थे गीत गोविंद कि राधा रानी के चरणों में कभी कभी कृष्ण को झुकना पड़ता है, राधा रानी के चरणों की सेवा किसको करनी पड़ती है, ये भाव लिखना था। लेकिन जयदेव गोस्वामी लिखते लिखते जब वहां पहुंचे तो नहीं नहीं ये तो संभव कैसे, ना नो नो यह नहीं हो सकता। मतलब वो पूरे दिल के साथ इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार, नहीं नहीं नहीं। तो उन्होंने कहा कि अब थोड़ा मैं विराम लेता हूँ, चलो अभी। तो उन्होंने अपना लिखने का कार्य वही रोक दिया। पत्नी को कहा कि मैं थोड़ा स्नान करके आता हूँ, हाँ भोजन वगैरह तैयार रखो। तो फिर उन्होंने अभी देखते थोड़ा सोच के देखते ये सही है गलत है ये कैसे संभव है। तो कुछ समय के बाद ओपन द डोर, तो पद्मावती जो जयदेव गोस्वामी की पत्नी ने दरवाजा को, हो गया स्नान? हाँ थोड़ा जल्दी कर दिया मैंने आज भोजन, हाँ भोजन अभी परोसती हूँ। तो जब थाली तैयार कर रही थी पद्मावती तब थोड़ा लिखाई पढ़ाई हुई उसी उस मैन्युस्क्रिप्ट में, फिर भोजन भी किया और चल दिए बिना बताए चले गए। कुछ देर के बाद खोलो, अरे अभी कौन आ गया, खोलो कह रहा हूं ना, जयदेव गोस्वामी हियर प्लीज। तो खोल दिया क्या, और कहते कि अब भोजन तैयार है क्या, अभी तो भोजन आप खाए। मैं क्या, अभी तो स्नान कर रहा था मैं, पिछले आधा घंटे से मेरा स्नान चल रहा था, मैंने गायत्री वहां की, तो आधा घंटे से तो मैं वहां था और भोजन मैंने किया तुम कह। तो फिर उसने, नहीं नहीं अभी तो आप आए और आप जब लिख रहे थे तब मैं आपके थाली बनाई, आप बैठे यहां भोजन किए, क्या मैंने लिखा। तो जयदेव गोस्वामी भागे दौड़े गए उनके मैन्युस्क्रिप्ट जहां लिखाई, तो सचमुच देखते हैं तो वह जो लिखना चाहिए था उनको पहले ही, लेकिन थोड़ी कुछ हिचकिचाहट, कुछ रिलक्टेंस था लिखने में, वो किसी ने और कोई लिख के चला भी गया। तो वह जयदेव गोस्वामी को कुछ देर नहीं लगी वैसे ये समझने में ये किसने लिखा, कृष्ण स्वयं आए। हाँ ये तो संभव, ये तो मेरा डेली एक्सपीरियंस है बाबा, राधा रानी को तो मुझे उनके चरणों की सेवा में हर रोज करता हूं, तुमको ये स्वीकार करने के लिए कठिनाई महसूस होती होगी, लेकिन मुझे तो ये तो चलता ही रहता है। तो भगवान ने लिखा, तो दोनों पति पत्नी को जब पता चला कि कृष्ण आए थे, उन्होंने लिखा और उनके घर में भोजन किया, तो दोनों पति पत्नी इतने कल्पना भी नहीं कर सकते, कितने हर्ष और उल्लास और उन्माद और लौटने लगे, कृष्णा 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 है, कृष्णा 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 है, कृष्णा 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 पाहि मां, कृष्णा 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 रक्षा मां, कृष्णा केशव कृष्णा केशव पाहि मां, कृष्णा केशव कृष्णा केशव कृष्णा केशव पाहि मां, राम राघव राम राघव रक्षा मां। कैसे कुछ गीत गाते हुए भाव विभोर हुए वो दोनों पति पत्नी, उन्होंने उत्सव मनाया, फेस्टिवल उनके घर में, क्यों कृष्ण उनके घर में आए और साक्षात्कार अपने अनुभव उन्होंने लिखा भगवान ने।